की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा माधव जी की जय। श्री श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। गौर प्रेमानंदी आल गौरीज टू द सेमल डिवोटीज। आल गौरीज टू द सेमल डिवोटीज। आल गौरीज टू द सेमल डिवोटीज। जय श्री प्रभुपाद। सातवें अध्याय का प्रारंभिक श्लोक आवृत्ति करेंगे। राजोवाच येन जेनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति करुणरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। श्री राजोवाच येन जेनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। आवृत्ति कीजिए। और माता जी लोग जिस अवतारेणा अवतार शरीर से भगवान परम सुंदर हरि ही भक्तों का दुख हरने वाले श्री कृष्ण ईश्वर परम नियंता करते हैं कर्ण वन्यानी कानों के लिए अत्यंत सुहावने मनोज्ञानी और मनोहर नह हम लोगों के लिए प्रभु हे समर्थ सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की तीन लीलाओं का उल्लेख है सकट भंजन त्रिनावर्त बध और ब्रह्मांड दर्शन। भगवान ने माता जी को यशोदा को विराट रूप का दर्शन कराया अपने मुख में। हम प्रारंभ करेंगे महाराज परीक्षित के इस प्रश्न से, देखें कहां तक पहुंचेंगे। राजा पुतने बध की कथा सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और पुतने बध की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं तीन श्लोकों में। येन जेना अवतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्ण गम्याणि मनोज्ञानी चन्ना प्रभु। भगवान जो जो भी अवतार लेते हैं और प्रत्येक अवतार में अद्भुत लीला करते हैं, तो भगवान की ये सभी लीलाएं किसी भी अवतार में हमारे कानों को और मन को बहुत सुहावनी लगती हैं। अद्भुत कथाएं हैं, जैसे भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, बाराह अवतार इत्यादि। प्रारंभ में यही सब अवतार थे। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, दोनों देश के राजा जो इस समय मनु महाराज बने हैं, जिनको वैवस्वत मनु कहते हैं, ये ब्रह्मा जी के इस दिन में ये सातवें मनु हैं, सातवां मनवंतर चल रहा है। तो वे राजा सत्यव्रत जिनका नाम था, वे कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, जल अर्पित कर रहे थे श्री भगवान को नदी में। अंजलि से जल उठा करके भगवान को अर्पण कर रहे थे। उसी समय एक छोटा मत्स्य, बहुत सुंदर मछली, उनके अंजलि में आ गया। तो स्वाभाविक ही जल के साथ उन्होंने तर्पण करते समय उस मत्स्य को भी पानी में ही फिर छोड़ दिया। जल देते समय तो मनुष्य की भाषा में वो मत्स्य बोला, हे महाराज, जलचर जीव बड़े क्रूर होते हैं, हमको बड़े बड़े मत्स्य खा जाएंगे, हमारी रक्षा कीजिए। ये अद्भुत चरित्र है भगवान का। ये भगवान जगत के पालक हैं, सबके जीवन दाता हैं। वे एक मनुष्य की भाषा में बोल रहे थे कि मुझे भय है, मुझे जलचर जीव खा जाएंगे। स्वभाव होता है जलचरों का, छोटे छोटे जीवों को निगल जाते हैं बड़े बड़े मत्स्य, अपनी ही संतान को खा जाते हैं। तो राजा को बड़ी दया आई, इस तरह से बच्चा बोल रहा है मछली का। तो महाराज ने उस मत्स्य को उठा लिया फिर और अपने कमंडलों में रख लिया। कमंडल में लेकर के वे अपने आश्रम पर आए, वे राजा थे, अपने घर आए। तो आते ही कुछ देर में वह मत्स्य कमंडल में सरस गया, मतलब काफी बड़ा हो गया, उसको जगह नहीं रहा कि। तब उसने फिर महाराज से निवेदन किया, आप हमको बड़े जल में रखिए, बड़े जलाशय में, ये हमारे लिए कम पड़ रहा है। ये अद्भुत चरित्र है भगवान का, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। तो महाराज ने कुछ बड़े बर्तन में रखा, फिर वो भर गया, बढ़ गया। तो शाम को वे अपनी पुष्करणी में पुकुर में रख दिए। छोटा तालाब था सरोवर राजभवन में, उसी में रख दिए। तो रात भर में बढ़ करके पूरा सरोवर को छेक लिया। फिर कहा कि ये हमारे लिए छोटा स्थान पड़ रहा है, तो रात भर में क्यों बढ़ कर। तो महाराज ने फिर मत्स्य को नदी में छोड़ दिया, जहां से लाए थे, कृतमाला नदी में। तो बड़े चकित हुए, बड़े आश्चर्य में पड़े थे उसकी दीन दशा देह करके मत्स्य की। महाराज, आप मुझे जल में छोड़ रहे हैं, हमें बड़े बड़े मत्स्यों से भय है। तो राजा से रहा नहीं गया, वे प्रश्न कर दिए, आप इस तरह से बढ़ रहे थे, निश्चित ही आप हमारे प्रभु हैं, भगवान नारायण हैं, आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका। तो भगवान ने कहा कि महाराज, आज से सातवें दिन इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, सब जगह केवल जल ही जल भरा रहेगा। उस समय एक नौका आपके पास आएगी, उस नौका को आप मेरे सिंह से बांध दीजिएगा, मैं बहुत बड़ा रहूंगा। मत्स्य भगवान ने कहा मेरे सिंह से बांध दीजिएगा और सप्तर्षियों के साथ आप चढ़ जाइएगा उस पर। जब तक ये ब्राह्मी निशा रहेगी, जब तक प्रलय काल रहेगा, मैं पूरे ब्रह्मांड में आपको घुमाते हुए चलूंगा। आप ठीक पहचान गए मुझे, मैं इसी के लिए यह रूप धारण किया हूं। तो महाराज अपने घर आ गए और वो दिन अब गिन रहे थे, सातवां दिन आया, अकस्मात प्रलय हो गया। ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो गया था। ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है तब प्रलय होता है, और जितना जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी रात होती है ब्रह्मा जी की। तो पूरी रात तक प्रलय रहा। ब्रह्मा जी के का दिन जो होता है उसको श्रीमद् भागवतों में कल्प कहा गया है, और ब्रह्मा जी के जीवन के अवधि को महाकल्प कहा गया है। 1000 चतुर्युग का इनका एक दिन होता, एक दिन, और उतनी ही बड़ी रात होती है। तो प्रलय हो गया, बहुत मुसलधार पानी बरस रहा था, पानी की वर्षा होने से ब्रह्मांड धीरे धीरे भरते भरते पूरा भर गया। महाराज सत्यव्रत, हम लोगों के मनु महाराज याद कर रहे थे कि भगवान आएंगे, तो भगवान 1,00,000 योजन बड़ा शरीर मत्स्य का धारण करके उपस्थित हुए। 1,00,000 योजन मतलब 8,00,000 माइल, इतना लंबा शरीर, उसी अनुपात में मोटा सब धारण करके आए। और तुरंत एक नौका आई, बहुत विशाल, यह पृथ्वी ही नौका के रूप में हो गई थी। तो उस नौका को जो फ्लोटिंग कर रही थी, तैर रही थी प्रलय जल में, भगवान के सिंह से मनु महाराज ने बांधा। बांधने के लिए उसी समय उपस्थित हो गए वासुकी जी, सबसे बड़ी रस्सी इस विश्व में है, सबसे लंबी और मोटी रस्सी, उन्हीं को समुद्र मचते समय यूज किया गया था, मंदराचल में लपेटा गया था। तो वे वासुकी नागरी उपस्थित हो गए और उनको नौका में बांधा गया एक छोर में, और एक भगवान के सिंह में। तो श्री भगवान बोल भी रहे थे, उपदेश कर रहे थे, बहुत कथाएं सुना रहे थे, और सप्तर्षि गण ब्राह्मण बैठे थे उस नौका पर, राजा प्रश्न कर रहे थे भगवान से, पूछ रहे थे विविध प्रकार के प्रश्न। तो उस नौका को खींचते हुए भगवान विहार कर रहे थे, प्रलय पयोधि जले धृतवान असी वेदम, विहार कर रहे थे। तब तक विहार करते रहे जब तक ब्रह्मा जी की रात समाप्त नहीं हुई, 1,000 चतुर्युग विहार करते करते भगवान दिखा रहे थे। यश जल चुकी बहुत लेवल बढ़ गया था, इसलिए निकट में दिखा रहे थे, ये धूल लोक है, यह लोक है, ये ग्रह है, इस तरह से बता रहे थे भगवान। नौका पर चढ़े थे सप्तर्षि गण और मनु महाराज, इसको बता रहे थे कि ये सब देखिए, यह लोक है, ये लोक ऐसा है। और भगवान ने फिर घुमा फिरा करके मनु महाराज को वहीं उनके राजधानी में कर दिया। प्रलय जल घट गया, कि एक घटना घटी, जब प्रलय जल अभी था उसी समय एक असुर जो ब्रह्मा जी के मुख से वेद चुरा लिया था, तो उसको भगवान ने मारा, वो भगवान से युद्ध करने आया तो अपने सिंह से उसका पेट फाड़ दिए, जैसे हिरण्यकश्यप का फाड़े थे, सिंह मार करके उसको पेट फाड़, उसका पेट फाड़ दिए, वो मर गया। उसका नाम था हयग्रीव, बहुत बड़ा असुर। भगवान ने उससे वेद छीन करके अपने मुख में धारण किया और उसके बाद श्री ब्रह्मा जी को दे दिया। बिल्कुल वेद को दिखाया गया है पुस्तक के रूप में, वो चुरा लिया था, लेकिन वास्तव में पुस्तकाकार वेद नहीं था, वेद है जिसको श्रुति कहते हैं, वेद को रट लिया, कोई अर्थ नहीं जानता था, वेद का सार है भगवान का भजन। ब्रह्मा जी से वो सुन लिया था, ब्रह्मा जी सो रहे थे रात्रि में तो उनके मुख से वेद निकल रहा था, जैसे हम लोग सोते समय महामंत्र बोलते हुए सोते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के मुख से सारे वेद निकल रहे थे और उस असुर ने सुन करके धारण कर लिया और वह ब्रह्मा जी को मारना चाहता था। तब भगवान ने उस असुर को मार करके वेद को लौटा लिया और वेद पुनः ब्रह्मा जी को दिया। इसी को जयदेव जी गीत गोविंद में कहते हैं, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेद विहित बहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तुम्हारे परीक्षित, इस प्रकार भगवान के सभी अवतार की लीलाओं को अद्भुत कह रहे हैं और ये लीलाएं बड़ी ही कल सुखद है, सुनने में कानों को सुहावनी लगती हैं और मन के लिए प्रिय है। इसी तरह से कूर्म भगवान उस समय प्रकट हुए थे जब समुद्र मंथन हो रहा था, अभी तट पर लाया गया मंदराचल, जब मंदराचल लाने में ही कितने दैत्य और देवता मर गए दब करके, बड़ी कठिनाई से उस पर्वत को लाया गया, गरुण जी पर लाद करके भगवान पहुंचे और जब उसे समुद्र में उतारा गया उस महान पर्वत को, तो अतिशय भारी होने के कारण वो सिंक हो गया, डूब गया। अब मंथन कहाँ से हो जब मथानी ही डूब गई। तो भगवान ने 1,00,000 योजन चौड़ा पीठ वाला कच्छप अवतार धारण किए और उस पर्वत को ऊपर उठा लिए। तब देवता और दानव फिर मिल करके समुद्र मत है अमृत प्राप्त किए। जब देवता और दानवों में विचार होने लगा कौन मुख के तरफ लगेगा और कौन पूछ के तरफ, तो दैत्यों को मुख के तरफ लगाने के लिए भगवान ने ट्रिक किया, वे जा करके मुख पकड़ लिए पहले, तो देवता लोग समुद्र हो गए। तो इसको देख करके दैत्य सहन नहीं कर सके, भगवान जानते थे कि जो देवता लोग करेंगे उसके विरुद्ध है लोग करेंगे, तो भगवान देवताओं के साथ मुख पकड़ लिए और ये लोग खड़े थे, कुछ पकड़ नहीं रहे थे, तो कहते हम लोग क्या नीच वंश के हैं, क्या हम पूछ पकड़ेंगे, हम ये मल मूत्र त्यागने वाला अंग नहीं पकड़ेंगे, हम भी बहुत पढ़े लिखे हैं, हम भी कश्यप जी की संतान हैं, हमारा कुल बहुत ऊंचा है और बहुत पढ़ाई किए हैं, असुर लोग भी बहुत पढ़ाई करते हैं, सब बड़े बड़े पीएचडी पढ़े हुए या इंजीनियर थे, बहुत बड़ी पढ़ाई किए, हम लोग कम नहीं है, हम लोग ये अंग नहीं छुएंगे। तो भगवान तो चाहते ही थे कि ये लोग मुंह पकड़े और वासुकी की सांस से जले, तो उन्होंने कह दिया ठीक है भाई हम लोग पूछ पकड़ लें, तो देवता लोग पूछ के तरफ हो गए और दैत्य मुख पकड़े, दिखा रहे थे हम बहुत यशस्वी हैं, अगर सांप दस देगा मरेंगे तो वीर की तरह मरेंगे, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, ठीक है मर जाएंगे ठीक, तो लोग पूछ पकड़ लिए और जब तक समुद्र मंथन हुआ वे लोग आह आह करके मर रहे थे, उस सांस की ज्वाला से झुलस गए और अन्न अमृत भी नहीं मिला, वो अमृत लेकर के भागे थे। तो ये कथा बहुत बड़ी है, मैं थोड़ा याद दिलाया कूर्म भगवान की। इसी प्रकार से बारह है अवतार, कृष्ण ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सुअर का अवतार लिया, बारह है अवतार। श्री मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, स्वयं हुआ मनु, पहला मनु, उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि हे पिताजी पृथ्वी का कहीं पता नहीं है, आपकी आज्ञा है सृष्टि करने के लिए लेकिन पृथ्वी का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, वे अपने प्रभु का ध्यान करने लगे, कि हे प्रभु पृथ्वी का पता नहीं है, आप कोई उपाय कीजिए। उसी समय ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न हो गए भगवान कृष्ण के, नारायण के, और उनके नाक से छींक आई, छींक के साथ ही एक सुअर का बच्चा चना के बराबर प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी के देखते देखते वो तो बड़े हाथी के बराबर हो गया, और कुछ देर के बाद एक विशाल पहाड़ के समान बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ मरीचि, दक्ष और कई पुत्र थे ब्रह्मा जी के, भृगु जी, अंगिरा इत्यादि, इनके साथ देख रहे थे भगवान को। सब लोगों ने स्तुति प्रारंभ किया भगवान की, सत्य लोक में ही स्तुति करके इन्हें प्रणाम कर रहे थे। उसी समय से भगवान प्रलय समुद्र में कूद पड़े, बहुत जोर की आवाज हुई, समुद्र में एक पहाड़ जैसा कूदा बारह, जितने जलचर जीव थे तिमंगल आदि ये सब छटपटाने लगे कि कौन जीव आ गया, क्या गिर गया समुद्र में, सब भागने लगे इधर उधर। तो श्री भगवान गए और सीधे जहाँ हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके रखा था रसातल, वहां पहुंचे भगवान तैरते हुए, और बहुत विशाल शरीर था, तैरते हुए पहुंचे तो वहां कुछ असुर रक्षा कर रहे थे पृथ्वी की, मतलब मालिक हिरण्याक्ष कमा करके लाए हैं और इसी के अंदर सारा सोना है, सारा हीरा सब कुछ पृथ्वी के अंदर है। तो सबसे बड़ा चोर हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष था और उसकी रखवाली कर रहे थे और असुर लोग। तो भगवान ने उनकी परवाह नहीं किया, वे सीधे गए और उनको देख करके वे लोग तो कौन है कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी लड़ने की। दूर से देख रहे थे, भगवान पृथ्वी को उठाए अपने दांतों पर और फिर तैरते हुए आने लगे। तो हिरण्याक्ष को फोन किया होगा उन असुरों ने कि आपका धन ये चुरा ले जा रहा है। तो हिरण्याक्ष गदा लेकर के दौड़ा रसातल में, तो देखा समुद्र के भीतर ये आ रहा है पृथ्वी को लेकर के। नारद जी ने बताया था कि वो वराह रूप धारण करके विष्णु अभी अभी तुम्हारी पृथ्वी को चुरा लेगा, ले लेगा। भगवान की निंदा की और उसके बल की प्रशंसा। नारद जी सबसे बड़े एक्सपर्ट आचार्य हैं, किसको कैसे मुक्त करेंगे, किसका मन कैसे भगवान में लगाया वे जानते हैं। तो हिरण्याक्ष को उन्होंने बताया कि अभी विष्णु गया है वहां जहां तुम पृथ्वी को रखे हो, तो व्याकुल हुआ, कहा कि ऐसा है, तो उसी ने गया लड़ने के लिए भगवान से। देखा कि विशाल वारा है पृथ्वी को उठाए हुए आ रहा है। यह संपूर्ण पृथ्वी भगवान के दांत पर बहुत सुंदर लग रही थी, सफेद सफेद दांत था, सफेद दांतों पर पृथ्वी अग्रभाग में बिल्कुल टिकी थी। यह है भगवान का बल, दांत से उठाए थे संपूर्ण भूमंडल को और एक दांत पर, और भी दांत के अग्रभाग पर आ रहे थे। तो उसने देखा तो कहा, अरे मायावी विष्णु, पहले हमारी पृथ्वी को तुम छोड़ो, पहले पृथ्वी छोड़ते हो कि नहीं, हमसे बिना युद्ध किए तुम ले नहीं जा सकते, लड़ना पड़ेगा हमसे। तो उस समय माता पृथ्वी बहुत डर रही थी, ये दोनों लड़ेंगे तो मैं बीच में गिर पड़ूंगी, फिर रसातल चली जाऊंगी। तो भगवान अपनी प्रिया भूदेवी को सांत्वना देने के लिए लड़ाई नहीं किए, वो आ रहे थे ऊपर और भगवान का पीछा किया। हिरण्याक्ष गाली दे रहा था, तुम कहां से आ गया, हम लोगों को ब्रह्मा जी ने दिया है पृथ्वी को, ये पृथ्वी हमारे हमारे काम के लिए है। तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि पृथ्वी कहां गई, और कह रहा है कि ब्रह्मा जी हम लोगों को दिए हैं। तो भगवान ने पूरे रास्ते में नहीं कुछ कहा, पहुंच करके ऊपर तल पर अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को स्थित किया और इसके बाद कहा, अब तुम्हारे जैसे बलवान से वैर करके कहां जाऊंगा, ठीक है आओ तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। तो गदा लेकर के युद्ध कर रहा था, इसलिए भगवान ने अपनी गदा का स्मरण किया, कौमुदकी गदा। तो युद्ध होने लगा, घट घट आवाज हो रहा था गदा का, बहुत सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभ में युद्ध हो रहा था रिलैक्स के साथ भगवान का, और ब्रह्मा जी और सारे देवता जो ब्रह्मा जी के लोक में थे वे सब इस युद्ध को देख रहे थे। बहुत प्रकार से युद्ध किया, अंत में मारा उसने भगवान की गदा पर जोर से और भगवान का हाथ कांप गया, भगवान के हाथ से गदा गिर पड़ी। इससे देवता लोग हाहाकार कर उठे, हाय हाय अब क्या होगा, भगवान इस विपत्ति में पड़ गए, वो लोग चिंता में पड़ गए। तो ब्रह्मा जी ने यह कह दिया कि हे प्रभु आप इसको अब जल्दी मारिए, अभी अभिजीत मुहूर्त चल रहा है, संध्या से पहले मारिए, नहीं तो इसका बल बढ़ जाएगा। ब्रह्मा जी भी घबरा गए। तो भगवान ने मुस्कुरा करके देखा ब्रह्मा जी की तरफ, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र हाथ में आ गया, नाचने लगा। इसको देख करके हिरण्याक्ष और चिढ़ गया, उसने अपनी माया का प्रसार किया, माया युद्ध, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र की ज्वाला से उसकी माया सब समाप्त हो गई। भगवान ने चक्र को लिया लेकिन चक्र से वध नहीं किया हिरण्याक्ष को, चक्र था चार बाहों में, एक बाह में चक्र था, लेकिन एक तमाचा भगवान ने बहुत जोर से मारा उसको, तो उसी समय चक्कर काट करके गिरने लगा, जैसे कटा हुआ पेड़ गिर जाता है वैसे गदा लिए हुए गिरा, गिर पड़ा खून फेंकता हुआ। तो भगवान ने उसके छाती पर चढ़ करके फिर उसको बार बार तमाचा मारते मारते और उसको मार दिया पूरा, भगवान को देखते हुए मरा। भगवान उसके पेट पर चढ़े हुए थे, तो उसकी ऐसी गति हुई कि वो भगवान का धाम प्राप्त किया, उसकी मृत्यु की प्रशंसा ब्रह्मा जी करने लगे कि ओहो ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होगी, कितना बड़ा भाग्यशाली। इस तरह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। तो किसी भी अवतार में भगवान अत्यंत मनोहर हैं और उनकी कथा बड़ी सुखद है, और फिर स्वयं भगवान की लीला तो कहना ही क्या। महाराज परीक्षित इन कथाओं का अनुमोदन कर रहे हैं, जक्षिण तो अपैत रतिर वितृष्णा सत्वम च शुद्ध्यत अचिरेण पुंसः भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम बदमन सेचित। जज सुनवता भगवान की कथा सुनने वाले पुरुष की अति अपैति वितृष्णा अपैति, अति अपैति वितृष्णा अपैति, अपैति का अर्थ है दूर हो जाती है, अति लाभ बता रहे महाराज परीक्षित कथा का, कथा सुनने का, कि श्रोता के मन में यदि अरति है, अरति के अरति का अर्थ है उसके मन में ग्लानी है, प्रसन्नता नहीं है, तो दूर हो जाती है अप्रसन्नता, दूर हो जाती है। भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण होता है, किसी भी जीव के मनुष्य के मन में एक ग्लानि होती है, मनोग्लानि कहते हैं। श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं अरति मनोग्लानि, मन में एक अफसोस रहता है कि हमको ये चीज नहीं मिला, हमको ये चीज नहीं मिला। किसी भक्त के मन में भी हो सकता है कि हमको इतना लाभ नहीं हुआ, ये नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, धन नहीं मिला। लेकिन भगवत कथा सुन करके ऐसा आनंद होता है कि कोई भी ग्लानि नहीं रहती है मन में। वो अनुभव करता है भक्त भगवान की कथा सुन करके कि हमको सब कुछ मिल गया है, हम मैं इस संसार में धन्य हूं। मनोग्लानि नहीं रहती है, अपायति दूर हो जाती है, तिरोभवती। ये लाभ बता रहे हैं, पांच लाभ बता रहे हैं परीक्षित महाराज। अरति अपायति तृष्णा अपायति दोनों को एक ही क्रिया में कह रहे हैं। और तृष्णा वित्रृष्णा विविध तृष्णा, इस संसार में किसी मनुष्य को बहुत बहुत तृष्णाएं होती हैं, हमको धन मिले, हमको मान मिले, हमको परिवार मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, और जो कुछ भी है संसार में। फिर तृष्णा होती है हमको स्वर्ग मिले, हमको इस पृथ्वी का राज्य मिले। देखते ही हैं कितनी तृष्णा है मनुष्यों को। हम विधायक बन जाएं, हम सांसद बन जाएं, और सांसद ही नहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, क्या क्या तृष्णाएं हैं। और इसके चलते आत्म प्रशंसा और परनिंदा यही बस श्रवण कीर्तन हो रहा है। अपनी प्रशंसा जहां भी हो करो और दूसरे की निंदा, यही संसार है। अनेक तृष्णाएं हैं, मंत्री बनने की तृष्णा, कोई पद पाने की तृष्णा, भोगों की तृष्णा। जीव सब मनुष्य जल रहे हैं इस तृष्णा से, उनको ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन जो भी मिलता है उसमें कोई सुख नहीं है। सुख भोगों में है ही नहीं। प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान सिंहदेव से कहते हैं, हे प्रभु इस संसार के किसी भी भोग में सुख नहीं है। मेरा पिता इतना प्रतापी था, पूरे ब्रह्मांड में उसका शासन था, लेकिन वह आपके द्वारा क्षण भर में मार दिया गया। तो मुझको ये सब स्वर्ग या इस लोक इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं चाहिए। हम पर आप कृपा कीजिए, अपने चरणों की सेवा में हमको बुला लीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ इस संसार में, जन्म मृत्यु से दुखी हूँ। बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मरना पड़ता है। अपने धाम में बुला लीजिए, अपने भक्तों के संगति में बुला लीजिए। साफ प्रार्थना करते हैं, भगवान ने कह दिया कि भोग भोगो इस संसार में, पिता का राज ले लो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, मैं तो देख चुका कि पिता के राज में कोई दम नहीं। स्वर्ग में भी किसी भी योनि में सकल योनि शुद्ध यह माना, सभी योनियों में जीव हमेशा जलता रहता है। आग क्या है? कामना। किसी भी वस्तु की इच्छा यही आग है, कामाग्नि। जैसे जीव जलता रहता है, कामनाओं को नष्ट कर दीजिए, तुम्हारे हृदय से दूर कीजिए। तो ये कामनाएं दूर हो जाती हैं भगवान की कथा सुनने से। यद श्रीवतः पुंसा अरति अपायती वितृष्णा अपायती सत्वम शुद्धयती। हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय से सारी कामनाएं निकल जाती हैं, एक ही कामना रह जाती है बस, वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति करने की। तो वो भक्ति जीव का स्वरूप है, वो जलाती नहीं है, वो आनंदित करती है। से भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। जब व्यक्ति ब्रह्म भूत होता है तो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता और हर्ष में अंतर है। संसारिक संपत्ति या भोग पा करके भी हर्ष होता है, विषाद भी हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रमता है वह सदा प्रसन्न रहता है, कभी कोई कामना उसको जला नहीं पाती। तो महाराज परीक्षित अनुभव कर रहे हैं कि ये भगवान की बाल लीला, खास करके पूतना मोक्ष को सुन करके मेरी कोई कामना नहीं रह गई और मेरा हृदय प्रसन्न है। मुझे खेद नहीं है, महाराज को इसकी चिंता नहीं है कि मुझे सातवें दिन सर्प दसेगा, तक्षक नाग दसेगा और मैं मर जाऊंगा, मेरा राज छूट जाएगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब छूट जाएंगे, मैं भोगहीन हो जाऊंगा, इसकी चिंता उनको नहीं है। बहुत बड़े लाभ में है, वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। उनके उद्गारों से ये व्यक्त हो रहा है, मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, हृदय में कोई कामना नहीं है, यहां तक कि मुक्ति की कामना भी नहीं। भक्ति हराओ तब पुरुषे च सख्यम, और भगवान में भक्ति और भगवान के भक्तों में मेरा सख्य हो, ये कथा सुनने से हो जाता है। भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है और तत्पुरुषे भगवान के पुरुष भगवान के भक्तों में मित्रता हो जाती है। कथा सुनने पर ही यह लाभ प्राप्त होता है। जब भगवान में प्रेम होता है तब भगवान के अपने जनों में भक्तों में सख्य हो जाता है। जब श्रीवता पुंसा कथा सुनना प्रारंभ करे व्यक्ति तो सुनते ही ये सब होने लगता है। सुनने के बाद नहीं, सुनना प्रारंभ करता है और उसी समय ये लाभ मिलना चालू हो जाता। अरति अपयती वितृष्णा अपयती सत्वम शुद्धयती हरौ भक्तिर भवति। तथा तत्पुरुषे भक्ते सक्षम भवती, ये पांच लाभ होते जाते हैं। और अति अपायती और वितृष्णा अपायती इसको एक में गिना जाता है। तो एक और दो सप्तम शुद्ध होते, हृदय शुद्ध हो जाता है। तीन तो हरौ भक्ते भवते और भक्ते सख्यम भवते, ये लाभ है भगवत कथा संश्रवण का। महाराज परीक्षित सबसे सुंदर श्रोता है, उन्होंने मरण पर्यंत नहीं खाने का और कुछ नहीं पीने का व्रत लिया है, फिर भी वे कहते हैं कि यदि आप हमको भगवत कथा सुनने का अधिकारी समझते हैं तो भगवान की कथा हमें सुनाइए। तदेव हारम बद मन से चेत, यदि आप मन में से उसको कथा का अधिकारी मान रहे हैं तो तुम्हें हारम बदल, हरि के चरित को कहिए। हरि के चरित को हारम कहते हैं, उस हारम हरि चरित को कहिए। तो हरि चरित तो अनंत है, अपार है, आप क्या सुनना चाहते हैं। तो महाराज परीक्षित ने तीसरे श्लोक में कहा, अन्यद्यपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम् मानुषं लोकमासाद्य तज्जाति मरुरुन्धतः। अन्य भी जैसे प्रथम मोक्ष की आपने कथा हमको सुनाई तो अन्य भी कृष्ण के तोकाचरितम बाल चरित को सुनाइए, क्योंकि वास्तव में वही सुनने लायक है। सभी भगवत चरित्रों में सबसे बढ़कर है भगवान कृष्ण की बाल लीला। तोका चरितम तो केन आचरितम, बच्चा भगवान है और वो भी मानुषम लोकमासाद्य। भगवान के अवतार वैसे बहुत होते हैं, जैसे भगवान वामन देव देवताओं में जन्म लिए, इंद्र के भाई बने, माता अदिति से भगवान का प्राकट्य हुआ देवता लोक में, कभी पक्षी के शरीर में, कभी पशु के कुल में जन्म लिए। और भगवान कृष्ण कई अवतार लिए हैं, कई जन्मों में, पशु पक्षी में, मछली तक में अवतार लिए। लेकिन भगवान का सबसे सुंदर अवतार मनुष्य जाति में हुआ, तब जाति मनोबंधता, यहां तक कि मनुष्य जैसा बिल्कुल आचरण किए। मनुष्य में भी छोटा बच्चा बन करके और जो उन्होंने लीला किया वो सबसे अधिक मनोहर है। ये मनुष्य जाति का बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान मनुष्य बन करके आए, अवतार लिए। और कई अवतार, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अवतार में भी भगवान ने बहुत बहुत लीलाएं किए, जैसे मथुरा में, द्वारका में, वृंदावन में, उसमें भी वृंदावन की जो लीला है वो सर्वोपरि है, परम मनोहर है। तो मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण से, कृष्ण की तोका चरितम, अन्यत अपि, अन्य बाल लीला भी, जैसे अपने पुतना मोक्ष की कथा सुनाया वैसे ही अन्य तोका चरितम बाल कृष्ण की लीला सुनाई। तब जाति मनोरुंधत, भगवान ने मनुष्य जाति को स्वीकार किया, इसलिए मनुष्य के रूप में आए मन। यही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्यों में भी गाय चराने वाले गोप जाति में जन्म लिए, तो मैं अपने प्रभु की बाल लीला को सुनना चाहता। सभी अवतार का अनुमोदन किया महाराज परीक्षित ने, लेकिन सबके बाद वे सुनना चाहते हैं तो का चरित्र, बाल चरित्र भगवान कृष्ण का। तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, जब भगवान कृष्ण 3 महीने के हुए थे, 6 दिन के थे, तो उन्होंने पुतना का उद्धार किया। और समय बीत रहा था, बढ़ते बढ़ते 3 महीने के हुए। 3 महीने के होने पर जब रोहिणी नक्षत्र था, एक दिन चंद्रमा रोहिणी से मिले थे, ये बहुत सुंदर योग था। इसी नक्षत्र में श्री भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो 3 महीने पर यही संयोग हुआ, और अपने जिस नक्षत्र में जन्म लिए थे उसी नक्षत्र में उन्होंने अंग परिवर्तन किया। पहले तो उत्तान बेटे रहते थे, लेकिन 3 महीने के हुए तो वे करवट बदले, जैसे बच्चे करवट बदलते हैं। तो ऐसे पहले करवट बदलने की शक्ति नहीं थी, जैसे लेटा दिया जाता था बस वैसे ही लेटे रहते थे। तो अपने से करवट बदल दिए, अंग परिवर्तन, पेट के बल हो गए अकस्मात। जो बच्चे उतान रहते हैं पहले, बाद में पेट के बल पर लेटते हैं, या बाएं बाएं जो कुछ भी, तो इसको कहते हैं अंग परिवर्तन। तो जो भगवान अंग परिवर्तन किए, माँ यशोदा ने देखा तो उसने एक बहुत बड़ा उत्सव किया। ये उत्सव पहले प्रचलित था भारतवर्ष में, तो माँ यशोदा स्वाभाविक ही अपने पुत्र के अंग परिवर्तन के अवसर पर उत्सव की कि बच्चा अपने आप पेट के बल हो गया। तो पुतना को मारते समय भगवान उसके पेट पर सोए थे, और उस समय भी उनका पेट नीचे था, लेकिन फिर भी वो तो पुतना को पकड़े पकड़े हो गए थे पेट के बल से, लेकिन आज अपनी शक्ति से पेट के बल हुए या करवट बदले। तो बहुत बड़ा उत्सव किया गया। माँ यशोदा अपने आसपास की गोपियों को बुलाई, ब्राह्मणों को आमंत्रित की, ब्राह्मण सब आए और प्रोफेशनल गायक लोग आए जो गीत गाते थे, ये सब आए। और कदाचित अथा निकौत काप्लवे जन्मर्क्ष योग्य संवेत जोशिता, जन्मर्क्ष योग्य, जन्म नक्षत्र का योग आ गया और अंग परिवर्तन के, तो बहुत शुभ माना जाता है कि जिस नक्षत्र में तुम बच्चे का जन्म हो और उसी नक्षत्र में वह अंग परिवर्तन करे, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। बहुत जल्दी बच्चा करवट बदलने लगा, तो इससे सिद्ध हुआ कि शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई पुलिय सुलिय नहीं है। ये बहुत खुशी हुई माँ यशोदा को, तो सब गोपियों को उसने निमंत्रित किया, मन महाराज को सूचना दिया और कुछ गोप आए, गायक गण आए, ब्राह्मण आए, उत्सव चालू हुआ। तो उत्सव में सबसे पहला उत्सव था कृष्ण का स्नान, कृष्ण को स्नान कराया जाएगा। नहीं तो बच्चा तो जन्म लेने के बाद बिना नहाए ही परमहंसी रहता है, उस बच्चे को स्नान कराया गया, मतलब अभिषेक। चकार सोनो रविशेच नम सती, परमा वैष्णवी माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण का अभिषेक की। उस समय वादित्य गीत द्विज मंत्रवाचक, कौन कौन लोग साथ में थे वादित्र बाजा बजाने वाले, जो जिस बाजा को जानते थे उस बाजा को कला पूर्वक बजा रहे थे। बहुत से बाजे बजने लगे, गीत और गीत गाया जाने लगा। जैसे हम लोग भगवान के जन्मोत्सव पर गाते बजाते हैं, जन्माष्टमी सभी लोग देखे हैं ना, ऐसे माता यशोदा के यहाँ गायक गाने लगे गीत। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रोफेशनल गीत गाने वाले बुलाए गए। पेशेवर गीत गाने वाले बहुत अच्छा गाते हैं। गीत होने लगा और द्विज मंत्र वाचक है द्विजा, और मंत्र पढ़ने वाले, वेदों से स्तुति गाने वाले, मंत्र पढ़ने वाले, महामंत्र बोलने वाले सब ब्राह्मण बुलाए गए निमंत्रण दे करके। तो ब्राह्मण आए, गोपियां आई और कुछ गोप भी आए, और अभिषेक होने लगा। खूब अच्छा से श्री कृष्ण को नहलाया गया। अभिसेचनम, अभिसेचनम का अर्थ है, अभी का अर्थ है पूर्णतः, अभितः, अभितः सेचनम, पूरा सिर पर पानी डाल करके और अच्छा से नहलाया गया। अभिषेक हो गया तो मां यशोदा पहले से ही व्यवस्था की थी, उसका बहुत बड़ा किचन था, रसोई, उसमें विविध पकवान बन रहे थे। उसका इंचार्ज थे माता रोहिणी, वही देख रेख कर रहे थे क्या बनाया जाएगा, क्या मेनू बनेगा, कितने लोगों के लिए प्रसाद बनेगा, ये सब व्यवस्था कर रहे थे। ब्राह्मणों के लिए सबसे पहले आला, ब्राह्मण को प्रसाद सबसे पहले दिया जाता था, उसके बाद गोप और गोपी और जनरल जनता को अंत में। प्रसाद वितरण की यही विधि है, प्रसाद सबको देना चाहिए लेकिन अवश्य देने में क्रम का निर्वाह करना चाहिए। पहले किसको देंगे, बाद मध्य में किसको, अंत में किसको, ये डिवीजन जरूरी है। प्रसाद में भेद नहीं करना चाहिए, प्रसाद एक ही समान हो लेकिन आगे पीछे हो सकता है, पर वस्तु भेद नहीं। स्थान भेद भी हो सकता है, कोई ऊपर खाए कोई नीचे खाए, स्थान में भेद हो सकता है लेकिन प्रसाद में नहीं। प्रसाद जो ऊपर खाए वही नीचे वाला खाए। हाँ, रोगी दुखी के लिए अलग हो सकता है, अलग डाइट हो सकता है, लेकिन भेद करने का मना किया गया है शास्त्र में। और जंगल भेद नहीं करना चाहिए। यहां तक कि उत्सव के समय चंडाल लिया जाए तो उसको प्रसाद देना चाहिए, कुत्ते को भी प्रसाद देना चाहिए। सबको उस अवसर पर कोई आ जाए तो प्रसाद देना चाहिए। तो मां यशोदा अपने पुत्र का अभिषेक की, बाजा गाजा चल रहा था, प्रसाद वितरण हो रहा था, पहले ब्राह्मण लोग खाए, उसके बाद और भी बारी बारी से सभी खा रहे थे। लेकिन बच्चा को नींद आने लगी, जिसका उसे किया गया था वो कृष्ण सोने लगा, नींद आने लगी, आंख बंद होने लगी। तो मां यशोदा देखी कि ये बच्चा सो रहा है, तो जा करके बेड पर लेट गई। यही नियम है, जब बच्चा सो रहा है तो जब तक वो सो न जाए पूरा, तब तक बच्चे को ले करके कुछ कीर्तन गाते हुए, कुछ गीत गाते हुए सुलाना चाहिए। जब सो जाए तब निश्चिंत होकर के घर का काम करे। तो मां यशोदा ने ऐसा ही किया, बच्चा नींद में आ रहा था तो उसको ले करके गोद में अपने बेड पर चली गई और सुला दी धीरे धीरे। जब देखी पूरा के सो गया तब उसको उठा करके उसके बेड पर रख, कृष्ण के बेड पर। तो छोटा सा बेड था पालना जैसा, उसे पालने पर लेटा दी और देखी कि अब घर में कहीं जगह नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है, हल्ला हो रहा है, तो बीच में नींद इसकी टूट सकती है, इसीलिए आंगन में एक बैलगाड़ी रखी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी जिसको छकड़ा कहते हैं, सकट। तो कहीं जगह नहीं थी, उन्हें जा करके उस पालने को उस बैलगाड़ी के नीचे झुला करके रख दी और वहीं सुला दी। कृष्ण के लिए जगह नहीं थी और जगह, वही आंगन में बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर के सुला दी और कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहा दे कि देखते रहना, कहीं बिल्ली इसको ना चाटे। सबका आकर्षण होता था ना उस बच्चे के प्रति, कोई गाय आकर के ना चाटे या मक्खियां इस पर ना बैठे, ये देखते रहना। तो बच्चे देख रहे थे, स्वाभाविक ही बहुत आसक्त थे, एक सेकंड भी अपनी दृष्टि हटाते नहीं थे, कृष्ण को ही देखते थे। इसी बीच एक घटना घटी, बच्चा जग गया अकस्मात और लगा रोने, और असल में ज्यादा उसको भूख लगी थी, अस्तनार थी, माँ के अस्तन को पीने के लिए रोने लगा और रोने लगा। और बच्चे जब रोते हैं तो अपने पैर को उछालते हैं ऐसे, शरीर नीचे रहता है, सोया रहता है, फिर भी वो पैर से पैर को उछालते रहते हैं। तो कृष्ण को भूख लगी थी माता के दूध पीने के लिए, वो पैर को उछाल रहे थे, उछालते उछालते अकस्मात उन्होंने बैलगाड़ी को टच किया नीचे से। उनके टच करते ही वो गाड़ी बहुत भारी थी फिर भी उलट गई और गिरी धड़ाम से। बहुत से बर्तन उस पर लादे गए थे, दूध दही घी सब रखा हुआ था, ये सब बर्तन फूट गए, दही घी बह गया, बहुत जोर की आवाज हुई, सारा उत्सव अब बहुत भारी विषाद में पड़ गया। सब लोग पहले गा रहे थे, नाच रहे थे, खा रहे थे, एकाएक आवाज सुन करके दौड़े सब लोग, नंद आदि गोप और जसोदा आदि स्त्रियां। जसोदा जी स्त्रियों में प्रधान थी और नंद महाराज पुरुषों में प्रधान थे, आए सब लोग देखने लगे। और पुरुष लोग यही कह रहे हैं, कथम सकटम विपर्यात, कथम स्वयं वही सकटम विपर्यात, ये अकस्मात स्वयं सकट कैसे उलट गया। वो केवल उलट ही नहीं गया, पूरा टूट गया सकट, उसके पहिए अलग हो गए और जुगंधर जो लंबे लंबे दारू थे, लकड़ी थे, वो सब टूट टट गए और बर्तन सभी गिर करके फूट गए, रस बह गया, घी सब बह गया, दूध दही सब बह गया। एक टीकाकार इस पर उत्प्रेक्षा किए हैं कि भगवान ने सब क्यों गिरा दिया। भगवान ने सोचा कि हमारे ऊपर एक कौन रस है, असली रस तो मैं हूं, रसो वैसा। उपनिषद कहता है कि रस तो भगवान है और ये हमारे ऊपर कौन रस आ गया, इसको गिराना चाहिए। इसलिए वे सब गोरस, गोरस मतलब दही दूध घी सब गिरा दिए। सबसे सबसे बड़ा रस तो मैं हूं, मेरे ऊपर कोई रस नहीं नहीं रहना चाहिए। अपने मन के एक भाव को उन्होंने व्यक्त किया है। हो सकता है कि भगवान ने मन में सोचा हो, लेकिन भगवान रो रहे थे तो रो क्यों रहे थे, इस पर श्रीपाद वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में लिखते हैं कि भगवान ने सोचा कि मैं वैकुंठ छोड़कर, गोलोक छोड़ करके इस गोपी के घर में आया और मेरे लिए कोई स्थान नहीं है रहने के लिए और खाने के लिए, सब लोग खा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, निताई गौर हरि बोल करके सब खा रहे हैं और मैं भूख से छटपटा रहा हूं। तो भगवान चाहे कि जसोदा का अटेंशन खींच ले, सब लोग हमारे तरफ देखें, उसके लिए उन्हें छकड़ा पलट दिया, बहुत जोर की आवाज हुई तो सब लोग अपना अपना इंगेजमेंट छोड़ करके, जो खा रहे थे खाना छोड़ करके, जो बजा रहे थे बजाना छोड़ करके, गाना छोड़ करके, सब आ गए निकट, सारी स्त्रियां आ गई, सब यही पूछ रहे हैं एक दूसरे से, अरे अरे सकट कैसे उलट गया, कैसे पलट गया, क्या कारण है। तो पुरुष लोग तो ज्यादा इसी फेर में थे कि सकट कैसे पलट गया। एक भागवत के टीकाकार हैं नारायण भट्टतरी, वो नारायणियम में लिखते हैं कि पुरुष लोग दार्शनिक बुद्धि के होते हैं तो इस पर विचार करने लगे कि ये सकट कैसे पलट गया, परंतु स्त्रियां तत्काल उपाय करते हैं। कृष्ण को यशोदा जी ने ले लिया और गोपियां देखने लगी कि शरीर पर कोई घाव तो नहीं लगा है, देखती हैं कि श्री चरण कृष्ण का ये प्रवाल के समान कोमल है। प्रवाल मतलब नए पत्ते, सुकुमार पत्ते के समान है, सुकुमार है, कहीं इसमें चोट लगी होगी। देखते हैं छूती है, यशोदा जी बच्चे को गोद में ली है और वे लोग देख रहे हैं कि ये पैर में कोई चोट नहीं लगी है ना, और हाथ कमल के समान सुकुमार है, हाथ में भी कोई चोट नहीं लगी है। अगर लगी होगी तो ये चिकित्सा करेंगे, लेकिन कोई चोट नहीं लगी थी, पैर भी ठीक था, हाथ भी ठीक था। तो वे तुलना करते हैं, नारायण भक्त भी कहते हैं कि स्त्रियों में सेवा वृत्ति है, स्नेह है ज्यादा, तो पुरुष लोग छकड़ा उलटने के कारण को ढूंढ रहे हैं। कोई देख रहा है पहिया शायद पुराना हो गया था, जीर्ण हो गया था, यही टूट करके गिर गया होगा, कि क्या बात है, कोई असुर आकर के धक्का दे दिया, असुर आकर के धक्का दे दिया, कोई सांड आया था वो धक्का दे दिया, कोई देखा आपस में पूछ रहे थे कौन आया था, किसने धक्का दिया, कैसे गिरा। तो वहां जो बच्चे नियुक्त किए गए थे भगवान की रक्षा के लिए, माँ यशोदा ने नियुक्त किया था, वो बच्चे वहां थे किनारे, छकड़ा उलट गया तो कोई भी आहत नहीं हुआ, किनारे ऐसे भगवान ने उसको पलटा था, उल्टा गिरा और किसी बच्चे पर नहीं गिरा। तो बच्चों से लोग पूछते हैं ब्रजवासी, तुम थे हाँ? हाँ थे, देखा हाँ, वो लोग साफ कहे, रुदता नैन पादे न क्षिप्त में तन संशय, हम लोगों ने देखा, सब कहे थे हम देखे, तुम देखे, मैं देखा, ये रो रहा था, रोते रोते इसने पैर को से मार दिया, छकड़े को उलट दिया। ये सुनते ही ये लोग कहे कि इनसे पूछने वाले भी बच्चे हैं, बेकार पूछता, अब सुनो, यही बच्चा उलट दिया है, क्या तमाशा है। उस बच्चे के अपरिमित बल को वे नहीं जानते थे, बच्चे साफ करे कि हमने देखा है, न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही मारा है, भी रो रहा था और पैर से मारा। बच्चे तो एक से एक एक सेकंड की देखते थे, अतः कृष्ण लीला के तत्वज्ञ हैं, वे कह रहे कि उन्हें देखा है, इसने पैर से मारा और छकड़ा उलट गया, टूट गया। तो कोई भी विश्वास नहीं किया, सब लोगों ने यही कहा ये दुर्घट वचन है, ये कभी संभव नहीं हो सकता कि ये बच्चा जिसका पैर इतना सुकुमार है, कोमल है, इतना कमजोर बच्चा है जो अपने से बैठ भी नहीं सकता, वो कैसे पैर से मारेगा। तो पूछने वाले को कह दिया कि ये बच्चे बच्चे नहीं है, तुम बच्चे हो। अब दूसरा विचार करते हैं कैसे पलटा है, सामने बताने वाले बता रहे हैं। तो हरिश्री जी कहते हैं टीका में देखो यही कलयुग में होगा। कृष्ण तत्व को जानने वाले व्यक्ति जब बोलेगा तो उसको लोग नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, और कोई मायावादी बनारस से आकर के, हरिद्वार से आकर के प्रवचन करेगा तो उसको लोग कहेंगे हाँ मंडलेश्वर जी प्रवचन कर रहे हैं, तो उसको सुनेगा। तो मंडलेश्वर वही जो एक शब्द जानता नहीं है, कुछ पता नहीं है कृष्ण का, और जिसको पता है उसकी उपेक्षा करेंगे कलयुग में कि ये तो बच्चा है, नादान है, ये क्या बोलेगा। कृष्ण तत्व तो कृष्ण लीला के रहस्य को बच्चे जानते हैं, उन्होंने देखा है कि ये पैर से मारा छकड़ा है, तो उसको लोग नहीं मारेगा, सुनना ही नहीं है, बेकार बात है। जो कल्पना कर रहे थे उनसे कहते हैं बताइए आप क्या हुआ, तो ये अनुमान है, ये है, वो है, वो है। तो आपस में वे लोग इस पर पड़े हुए थे कि कैसे छकड़ा लट गया है। जैसे कोई ट्रक रखा हुआ है, लोड ट्रक, और खड़ा किया गया है पार्किंग में, अपने आप उलट जाए तो बहुत भारी भारी विस्मय की बात है ना। तो किसी को ये पता नहीं था कि इसी बच्चे ने पलट दिया है। इस बड़ा बल लगा करके छकड़ा को नहीं उलटा, वही छोटा सा नन्हा शरीर बाल, और बाल लीला द्वारा ही छकड़ा को पलट दिया। बाल लीला में पुतने का स्तन पीते हुए ही उसको मार दिया। ये सब अद्भुत लीलाएं हैं भगवान। जब मां यशोदा ने बच्चे को लिया तो फिर ब्राह्मणों को बुलाए अब सब स्वस्ति वाचन के लिए। स्वस्ति वाचन का अर्थ है सुवस्ति पाठ, शोभन, सुवस्ति शोभन सत्ता के लिए, इस बच्चे की स्थिति ठीक रहे उसके लिए कुछ वैदिक स्तुति बोलना, मंत्र बोलना, इसके लिए ब्राह्मणों को बुलाया। वो लोग बोलने लगे स्वस्ति वाचन। सबसे बड़ा स्वस्ति वाचन है महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगल होता है भगवान के नाम से, यही स्वस्ति वाचन है। तो मां यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया, वे लोग स्वस्ति वाचन किए। सुक्त वैदिक मंत्रों से बलवान गोप लोग मिल करके फिर उस छकड़े को सीधा किए। तो बहुत जगह से टूट गया था, लेकिन किसी तरह से कुछ मिस्त्री टाइप के गोप होंगे, वे लोग सीधा किए छकड़े को। और अब बर्तन तो सब बह गए थे, लेकिन फिर सजाए, घर के सामान बहुत से उस पर रहते थे, और उस छकड़े के रूप में एक असुर आया था, वो सबसे अलक्षित छकड़े के रूप में ही था, उसी को भगवान ने मारा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भूत बन करके आया था। भूत कहीं भी किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भूत को स्थूल शरीर नहीं मिलता है तो इसीलिए बड़ा दुखी रहता है और स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो भूत वो भी असुर भूत था। एक तो असुर और दूसरे भूत है, तो छकड़ा के रूप में हो गया था और कृष्ण को मारना चाहता था, कंस के द्वारा भेजा गया था। किसी दिन कृष्ण पर वो छकड़ा को पलटने वाला था तो भगवान इसको देख लिया और उन्होंने ही रोने के बहाने छकड़ा को पलट दिया। नंद महाराज स्पेशल ब्राह्मणों को बुलाए, बहुत प्रकार से फिर चिकित्सा कराए। ब्राह्मण लोग पवित्र औषधि से और मंत्र से जल से भगवान का अभिषेक किए, फिर अभिषेक हुआ। पवित्र औषधि जैसे नीम की पत्ती, अब सबको आशंका हुई कि ये ग्रह लग रहा है बच्चे को, ग्रह कोई खड़ी गाड़ी को कौन पलटे है, गिर गए थे गाड़ी, तो इसलिए शंका है कि ग्रह कोई लग रहा है, बच्चे को ग्रह बाधा है लग रही है। अरे ग्रह क्या, वही खुद ग्रह है, लेकिन ब्रजवासियों का विचार है, ब्राह्मण लोग भी सोच रहे हैं कि एक ग्रह बाधा है, तो उसके लिए भगवान के नाम सब जप रहे हैं, वैदिक मंत्र बोल रहे हैं, और नीम की पत्ती या बेल पत्र या आम का पत्ता या अश्वत्थ का पत्ता, पीपल का पत्ता और आंवला का पत्ता जल में डाल करके जल को अभिषेक की जग बना करके फिर स्नान करा रहे हैं और झाड़ रहे हैं, झाड़ना फूकना कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, या वैदिक मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं ग्रह निवारण के लिए। ग्रह निवारण भगवान के नाम से ही हो जाता है। कोई भी ग्रह बाधा दे तो सीधे भगवान का नाम बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी ग्रह डरते हैं भगवान के नाम से, नाम से ही डर करके भाग जाते हैं। विष्णु नाम ग्रहण भी रवा, नाम लेने वाले से भी लोग डर जाते हैं, दूर रहते हैं। जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है वही स्वयं ग्रहों से पीड़ित हो जाए, कैसे हो सकता है। लेकिन स्नेह है ब्रजवासियों का भगवान की बाधाएं दूर करना चाहते, तो ब्राह्मणों को भोजन कराया गया महागुणम, बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया गया। भोजन में स्वादिष्ट होने का स्पष्ट कारण है कि नंद महाराज के रसोई में गाय का घी, गाय का दूध ही यूज हो जाता था, गाय के द्वारा दूध दिया जाता है और दूध घी से दही से अनेक प्रकार के पकवान प्रस्तुत किए जाते हैं। जब तक भोजन में घी ना हो, दही ना हो, दूध ना हो तो महागुण हो ही नहीं सकता। भोजन में सबसे बड़ा गुण है कि उसमें गाय के घी का संपर्क होना चाहिए, गाय के दही से या गाय के दूध से मेनू बनाया जाए। इसके बिना भोजन निरस है। मन महाराज वैश्य थे, इसलिए उनके यहाँ गायें प्रचुर मात्रा में थीं और कोई घी या सामान गाय से उत्पन्न होने वाला कोई बाजार से नहीं लेना पड़ता था। पर्याप्त दूध था, पर्याप्त घी था, दही, उसी से प्रसाद तैयार किए गए थे। ब्राह्मणों को खिलाया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी गई, माँ यशोदा ने दिया। सुंदर सुंदर वस्त्र, मालाएं और गौएं दान दी गई, अभीष्ट धेनु में। अभीष्ट धेनु का मतलब है ब्राह्मण जैसा गाय चाहते थे और जैसा दान देना चाहिए। कोई गाय बूढ़ी नहीं थी, कोई गाय बिना दूध वाली नहीं थी, सब धेनु धेनु थी। धेनु का अर्थ है जिस गाय का बच्चा हो और दूध देती हो उसको धेनु कहते हैं। तो धेनु गौवी दान दी गई और ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दिए कृष्ण से, कृष्ण को। यदि भगवान को किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, लेकिन नंद बाबा यही सोचते थे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है, ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाए। सब लोग बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे, चिरंजीवी भव, सुखी भव, तुम बहुत दिन जियो, सुखी रहो, इसी तरह से तुम्हारी विपत्ति दूर होती रहे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह सुइया देश हिंसा मान वर्जिता न तेसम सत्य शिला नाम आशीष विफुला करता। जो ब्राह्मण असूया किसी में दोष नहीं निकालते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं और अभिमान नहीं करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए, इस तरह की भावना जिनके अंदर नहीं है और जो सम दम से युक्त है, इंद्रियों पर नियंत्रण है जिनका, जिनके मन में शांति है, क्रोध नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। ये सोच करके नंद महाराज ने ब्राह्मणों के द्वारा अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाया। आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए समाज में ब्राह्मण होना ही चाहिए। ब्राह्मण बनने की शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मण का गुण है अनसूय होना, असूया नहीं रखना, किसी के गुण में दोष नहीं निकालना, किसी से द्वेष नहीं करना और अंधत झूठ नहीं बोलना, हमें असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। मनुष्य के पास वाणी एक बहुत बड़ा धन है, तो वाणी जब निकले तब शुद्ध भगवान के नाम या गुण परक सत्य वाणी निकले, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने वाला ब्राह्मण अपने प्रभाव को खो देता है। झूठ बोलने वाला कोई आशीर्वाद दे तो उस आशीर्वाद में क्या दम है, उसकी वाणी पहले से ही अशुद्ध है तो उसके आशीर्वाद का असर नहीं होगा। लेकिन यदि सत्यवादी ब्राह्मण है, सत्यशीला नाम, सर्वदा सत्य व्यवहार करता है, शास्त्रों को पढ़ता रहता है, स्नान करता है, शुद्ध रहता है, संध्या वंदन आदि करता है, सर्वोपरि है कि भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, भागवत पढ़ता है, तो ऐसा ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है। तो ऐसे ब्राह्मण की आवश्यकता है समाज में, जो जो जनता को आशीर्वाद दे सके, उनका आशीर्वाद काम करे। अगर ये गुण नहीं है ब्राह्मणों में तो उनके आशीर्वाद का कोई फल नहीं मिलता है। जैसे वीडियो में देखते हैं कभी कभी, कोई व्यक्ति कोई ऋषि मुनि बन करके और किसी को आशीर्वाद देता है। मान लीजिए राम लीला ही है, रामलीला में कोई विश्वामित्र बना है, कोई वशिष्ठ बना है, ये सब नकली सिनेमा के एक्टर बनते हैं, और वे आशीर्वाद दें तो उस आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं। नकली वशिष्ठ जी बन करके कोई वशिष्ठ हो नहीं जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण केवल नाम मात्र का हो और ब्राह्मणोचित गुण नहीं है तो फिर वो उसका आशीर्वाद प्रभावित नहीं कर सकता है किसी को। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए सच्चे ब्राह्मण बनाने की आवश्यकता है। इस पर बहुत विस्तार से लिखे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, अपने शिष्यों को ब्राह्मण बनाते थे, वे सच्चे ब्राह्मण हैं। इसीलिए हरे कृष्ण आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण महानामृत में जो ब्राह्मण बनते हैं उनकी एक जिम्मेवारी है कि ब्राह्मण के जो गुण वर्णन किए गए हैं वो गुण की रक्षा करें, हमेशा सावधान रहें, हम किसी से द्वेष न करें, किसी के गुणों में कभी कोई गलती न निकालें, सबको सम्मान दें और अभिमान न करें। कभी अभिमान न करें कि मैं ब्राह्मण हूं, दीन भाव से रहना चाहिए, अमानना मान देना, सबको सम्मान देना चाहिए, स्वयं मान नहीं चाहना चाहिए। ब्राह्मण हो जाने पर ब्राह्मणोचित बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। तो ब्राह्मण बनते ही हैं। वैसे तो जो वैष्णव हो गया वो ब्राह्मण हो ही जाता है, क्योंकि ब्राह्मण पहले होता है तब वैष्णव होता है, ब्राह्मण बने बिना वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव बहुत ऊंचा पद है तो ब्राह्मण नीचे का पद है, तो जब वैष्णव हो गया उसमें ब्राह्मणोचित गुण होना ही चाहिए। केवल इसके लिए सेकंड दीक्षा नहीं है कि हमको डीटी वर्षित मिले, ये शुद्ध रहने के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए है। अतः अपना उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए कि हमारा धर्म है जगत में शुद्ध ब्राह्मण प्रेजेंट करना, जिससे लोगों का उपकार हो, लोगों को आशीर्वाद दिए जाए, आशीर्वाद सफल हो। जैसे भगवान पर संकट आ रहा है वैसे समाज में संकट आता ही रहता है, तो ब्राह्मणों की जरूरत है। ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर भर जाएं, एलोपैथिक दवा दें और पोलियो सोलियो का, उचित चिकित्सा यह है कि भगवान के नाम का जप किया जाए, वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाए, शुद्ध जीवन जिया जाए, कभी झूठ ना बोले व्यक्ति। कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी के गुण में दोष निकालता है, जैसे कोई भक्ति कर रहा है, आचरण कर रहा है और उसकी चर्चा की जाए तो कोई सुन करके कह देता है, अरे नहीं ये सब फालतू बात, गुण को ग्रहण करना चाहिए। जैसे चैतन्य चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, सारे जगत में यह एक विख्यात मंदिर होगा। हम लोग नदिया गौरव उत्सव देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन नदिया का ही नहीं पूरे भारत का महान गौरव यह मंदिर होगा। तो किसी को निराश नहीं होना चाहिए कि इस कार्य में देर हो रही है, ये कार्य तो होकर के ही रहेगा क्योंकि यह नित्यानंद प्रभु का प्लान है। नित्यानंद प्रभु इस भविष्यवाणी किए हैं कि यहाँ एक विराट मंदिर होगा, तो भगवान का संकल्प व्यर्थ नहीं होता है। हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी अकेले कमल के पत्ते पर बैठे थे, चारों तरफ घोर अंधकार था, कोई व्यक्ति पास में नहीं था, और रजोगुण से विभावित होने से ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हो रही थी कि मैं सृष्टि करूंगा, पर सृष्टि करने के लिए कोई बुद्धि नहीं थी उनको, और कोई सहायक नहीं था, कोई उपकरण, कोई मेटेरियल नहीं था किससे सृष्टि करें। तो सबसे पहले तो वे खोजने लगे कमल के सोर्स को, कमल कहाँ से उगा है, तो कमल तो उगा था भगवान के नाभि से। तो वे खोजते रहे हजारों वर्ष कमल के अंदर उसके नाल से खोजते रहे, लेकिन भगवान के नाभि तक नहीं पहुंचे। फिर वहां से उदास हो करके, खिन्न हो करके उसी कमल पर बैठ गए। बहुत जोर की हवा चल रही थी, आंधी चल रहा था, कोई सहायक नहीं था, बहुत खिन्न बैठे थे। तो उसी समय तप तप भगवान के दो सिलेबस सुनाई पड़े, तपा तपा ब्रह्मा जी समझ गए कि तपस्या की आज्ञा हो रही है, तप करो तप करो। तो श्री भगवान के वचन पर विश्वास करके ब्रह्मा जी तप करने लगे, मन को समाहित करके तपस्या करने लगे। लाखों वर्ष तक तपस्या की, तब उन्हें भगवान का दर्शन मिला। भगवान ने उनसे बात किया, हाथ मिलाया, कहा कि हे विधाता, तुम ब्रह्म सृष्टि करना चाहते हो तो मेरी कृपा से तुमको सब बुद्धि मिलेगी और सृष्टि कर्म में तुम्हारी आसक्ति भी नहीं होगी। हमने कुछ किया है यह आसक्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम किए और बड़े उत्साह से सृष्टि करने लगे। कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से यह विचित्र ब्रह्मांड रचने की शक्ति उनमें आ गई। ब्रह्मांड को सजाने की, एक मंदिर छोटा सा ब्रह्मांड के अंदर है तो क्या बड़ी बात है। विश्व रचना की शक्ति ब्रह्मा जी को मिली। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और अपने को निमित्त बनाना चाहिए भगवान की सेवा में। यह तो मंदिर बनेगा ही, क्योंकि यह भगवान का प्लान है और भगवान के परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी का संकल्प है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए मैं मंदिर बनाऊं, अपने शिष्यों से वे हाथ जोड़ करके ये कहे थे कि तुम लोग पूरी शक्ति लगा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए भव्य मंदिर तैयार करो। तो उस कार्य में देर हो गई है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है हम लोगों के साथ और जितना हम कर सके उतना हमारा श्रेय होगा। काम तो होगा ही, जैसे महाभारत का युद्ध है वो तो होने वाला था। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये होगा, सभी मार दिए गए हैं, फिर भी तुम निमित्त मात्र बनो, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, हे सव्यसाची तुम निमित्त मात्र बनो, जसो लभस्व, जस प्राप्त करो, अन्यथा देखो मैं सबको मार चुका हूं, ये युद्ध हो चुका है। तब अर्जुन आश्वस्त हुए और भगवान की आज्ञा का पालन किए। हम लोगों को भी एक निमित्त मात्र जो भी थोड़ा बहुत सहायता करना है करें, ये हमारे लिए श्रेय होगा। हम यदि कुछ भी इस मंदिर में अपना योगदान दिए, अपना अर्थ दिए, अपनी बुद्धि लगाए तो श्रेय होगा, इससे भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। कभी कभी लोग निराशा व्यक्त करते हैं कि इतना विशाल प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाएगा। पूरा क्यों नहीं होगा, हमें अपनी शक्ति पर नहीं भगवान की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान एक दिन में एक रात में सारे मथुरा वासियों को ले गए द्वारका और अपने सेवक विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दिए कि मथुरा जैसा भव्य नगर बना दो समुद्र में। एक रात में ही नगर बन गया, बहुत विशाल, उसमें भगवान का मंदिर बना है। उस नगर में भगवान विष्णु का मंदिर, जिसकी पूजा वसुदेव जी करते थे, माता देवकी करते थे, बहुत विशाल मंदिर बना है। रातों रात तो खड़ा हो गया मंदिर, सारा नगर सजा दिया गया और एक रात में भगवान अपनी योग माया से सभी मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिए। वे सोए मथुरा और जगे द्वारका में। सारे घर द्वार मथुरा के ही समान थे, वहाँ द्वारका में बहुत विस्तार से नगर बन गया। तो ये अविश्वास की बात नहीं है, कोई कोई कल्पना नहीं है, तो सत्य है और भगवान है और भगवान की वही शक्ति अभी भी है। केवल वे प्रभु हमारा प्रयत्न देखना चाहते हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। जैसे भगवान राम सेतु बंधन कर रहे थे, समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तो एक छोटी गिलहरी पुल पर आ जाते थे, तो बानरों ने शिकायत किया भगवान से कि ये नीचे आ जाते, कभी पैर पड़ जाएगा, इसको हटा दिया जाए। तो भगवान ने कहा कि तुम लोगों को जो करना है करो, उसको जितनी शक्ति वो कर रही है उसको करने दो। तो उस गिलहरी ने सोचा कि ये बानर लोग बड़े बड़े पत्थर ला करके रख रहे हैं, लेकिन पत्थरों के बीच में फाका है, तो वो समुद्र से बालू लेकर के भरती थी उस फाका को, इस पर चलने में भगवान को कष्ट होगा, कोमल पैर से इस पर चलेंगे, इसीलिए वो भर रही थी उस फाका को। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे, वो डबल काम कर रही थी, समुद्र में जाती थी अपने शरीर में पानी लेकर के, भींग जाते थे तो पानी लेकर के आते थे, यही काम करते थे, समुद्र का पानी खाली करना, समुद्र को खाली करना, और इधर से लौट करके जाती थी धूली में, ये समुद्र को भरना है, पानी कम करना है और भरना है। तो भगवान उस पर इतने प्रसन्न हुए, हनुमान जी से कहा भगवान ने, तुम गिलहरी को बुलाया है, तो आई, उसे अपने हाथ पर ले लिया भगवान ने, बाएं हाथ पर ले करके और अपनी तीन उंगलियों से उस पर चिन्ह बनाया, वो चिन्ह आज भी है भारत की गिलहरियों पर, और अमेरिका की गिलहरी पर तो मैं नहीं देखा, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, तो ये वो चिन्ह आज भी है भगवान का प्रसाद। तो हम तो गिलहरी से भी गाय देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारी सेवा को अप्रिशिएट करेंगे, हम जो भी कर सकते हैं करें। राधा जी प्रभु जी हमसे कह रहे थे कि साल भर में $12 मिलियन लगेगा, 70 करोड़ रुपया इस मंदिर में साल भर में लगेगा, और इस तरह से लगते लगते तब ये 2022 में कंप्लीट हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों को ये भगवान का काम समझ करके अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, जहां जाएं वहां इसका प्रचार करें, लोगों को प्रेरित करें, जिससे वे अपनी लक्ष्मी अर्पित कर सकें, अपना विचार, अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि, अपना शरीर सब अर्पित कर सकें। इसके बाद इसकी व्यवस्था की बात है, सब कुछ हो जाएगा, हजारों ब्राह्मण रहेंगे यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए, कीर्तन सुनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, बहुत विशाल समाज यहाँ जुटेगा, लेकिन ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सुलभ रहेगा। कि भगवान की कृपा असंभव को भी संभव कर देती है। तो उत्साह रखना चाहिए और दूसरों को भी उत्साहित करना चाहिए। भगवान हमारी सेवा की सराहना करेंगे, हमें लगना चाहिए। कई भक्त इसमें लगे हुए हैं, इस यज्ञ में हमारा भी योगदान हो, हमारी आहुति हो, हम जितना भी कर सके करें। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो एक गुजरात की महिला थी श्रीमती मुरार जी, उससे मिलने गए थे। हमको माता जी ने बताया था 1992 में, मैं समुद्र तट पर गया था टहलने के लिए, तो लौटते समय समुद्र तट पर ही एक भक्त ने कहा कि यहाँ वो माता जी रहती हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी को अमेरिका भेजा था। तो मैं गया, उनसे भेंट किया और माता जी से पूछा। श्रील प्रभुपाद जी आपसे क्या क्या आग्रह किए? तो माता जी ने कहा कि आपके गुरु महाराज बहुत दृढ़ संकल्पी थे, बहुत उनका संकल्प दृढ़ था। मैंने देख लिया कि वे खड़े भी रह नहीं रहे, खड़ा होने में दिक्कत हो रहा था, तो बैठने के लिए मैंने चेयर दिया। फिर भी वे कह रहे थे कि आप मुझे टिकट दे दीजिए। माता जी का व्यापार होता था कुछ अमेरिका में और पश्चिमी देशों में, तो मालवाही जहाज चलते थे कलकत्ता से। तो माता जी से श्रील प्रभुपाद जी टिकट मांग रहे थे, रिजर्वेशन की याचना कर रहे थे। तो माता जी ने कहा कि मैं बोली कि स्वामी जी, इस उम्र में आप जा रहे हैं विदेश, आपका शरीर छूट जाएगा, मुझे हत्या का दोष लगेगा, आप ऐसा आग्रह मत कीजिए। मुझे टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपका स्वास्थ्य देख रही हूँ, आप ऐसा साहस मत कीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी बार बार कहते, आपके गुरु महाराज इतने दृढ़ संकल्प वाले थे। उन्होंने कहा कि हमको अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए जाना है, और मुझे विश्वास है कि मैं आज्ञा के पालन कर पाऊंगा, आप हमको व्यवस्था कर दीजिए। तो इतना प्रभुपाद ने किया। 79 वर्ष की आयु में वे अमेरिका गए, बोस्टन नगर पर पहुंचे जहाँ कोई परिचित नहीं था। अमेरिका के लोगों की दशा देखे, घोर रजोगुण और तमोगुण में है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक गीत लिखे हैं, किला गया नीला है था करो वे गति, हे कृष्ण हमको किस लिए लाए तुम, किस लिए लाए, जिस काम के लिए हमको लाए तो वो काम करवाओ हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। श्रील प्रभुपाद जी समय भागवतम दे गए थे। भागवत का यह श्लोक प्रभुपाद जी को आश्वासन दिया, श्रीमताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तस्थो हे भद्राणी विद्मोति सुहर सताम। जो कोई श्रद्धा से भगवान कृष्ण की कथा सुनता है, उनकी वाणी को सुनता है ध्यान से, उनकी कथा को सुनता है, तो